साथी को साथ रख कर साक्षी और खुशनुमा के तकनी से बोलो आज विश्व कल्याण कार्य पास विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे बात की विशेषता क्या बताइए विश्व कल्याणकारी बाबू और धर्म के कारण तो अपने अपने दुख अपने अपने धर्म के कल्याणकारी होते उनका भी पूरा कल्याण नहीं कर पाते दुनिया नीचे गिरते चली जाती उनके अपने ही फॉलोअर से नीचे गिरते चले जाते तो विश्व कल्याणकारी का तो सवाल ही नहीं और यहाँ बाप की विशेषता बताई विश्व कल्याणकारी सारे विश्व का कल्याण करके तब वापस जाता है और कोई हवा में कल्याण नहीं करता सारी दुनिया ऐसे ही नहीं मानती है बात फादर को हर धर्म के लोग उसको मानते हैं तो जरूर प्रैक्टिकल में कुछ करके गया होगा सारे विश्व के लिए प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ ऐसा विश्व कल्याणकारी बाप चारों तरफ के बच्चों को दे माने 500 करोड़ के बच्चों को दे 500 करोड़ के बच्चे बने हैं तो बनेंगे किन बच्चों को देख उसी में तो आया मैं तो अपने बच्चों से ही बात करता हूँ और आपसे थोड़ी बात करता हूँ माने जो प्रैक्टिकल में मेरे बच्चे बनते हैं उनसे ही बात करता हूँ तो जरूर प्रैक्टिकल में बाप भी होगा और बच्चे भी हूँ तो ऐसे प्रैक्टिकल में आया हुआ बाप विश्व कल्याणकारी बाप और अपने प्रैक्टिकल बच्चों को देख करके हर्षित हो रहे हैं इस रूप में देख रहे हैं बिंदु रूप में बिंदु बाप देखता है जरूर सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है बच्चे हैं तो इसलिए ही तो जरूर होंगे और इसलिए ही सो सहयोगी जरूर होगा इसलिए ही मन योगी और योगी सो सहयोगी जरूर होगा तो ऐसे सहयोगी बच्चों की सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है हर एक के दिल से मेरा बाबा ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं मेरा शब्द तब आता है और किसी का नहीं पहले मेरा बाप दादा भी रिस्पॉन्स में कहते हैं वो मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे हर एक बच्चा प्रिय भी है और लाडला भी है क्यों कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो प्रिय और लाडला है करोड़ों परमर्श है इस दुनिया में उन करोड़ों में से कोई कोई निकले बेसिक नॉलेज में और उनमें से भी बाप ने फिर चयन किया आपके द्विजन्मा ब्राह्मण हुए जिसको ही कहा जाता है पक्का ब्राह्मण तो कोटा में से कोई निकले बेसिक नॉलेज में और फिर جو نکلے ان میں سے بھی چین ہوا. جیسے مرلی میں پہلے ہی بولا آتما روپی سوئی کی ساری کٹ اترنے پر تم بچے ڈائریکٹ واپس سیکھو گے. ساری کٹ اترنا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کرماتیت ہو جائیں گے. بیسیکلی جب ساری کٹ اتر جاتی ہے تو بچے باپ سے ڈائریکٹ ملنے کے ادھیکاری بن جاتے ہیں, ماں کے تھرو نہیں, ڈائریکٹ باپ سے. تو وہ ہوئے کوسوں میں سے کوئی اور کوئی میں سے بھی چین ہوا تب کوئی تو لاڈلے ہوئے نا, تو باپ دادا بھی لاڈلے بچوں کو دیکھ خوش ہوتے ہیں, بچوں کو بھی سدا خوشی میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑے سمے کے لیے نہیں, کب تک کے لیے ڈانس کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. چلیے ابھی ابھی ڈانس کر رہے ہیں خوشی میں اور ابھی ابھی مایا نے بھوت بنا دیا, باپ سدا کا ڈانس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. خوشی میں رہتے تو ہیں لیکن باپ سدا چاہتے ہیں, تو سدا خوش رہتے ہو کہ فرق پڑ جاتا ہے خوشی میں, کبھی بہت خوشی کبھی تھوڑی ہوئی کبھی بہت کم ہو گئی. باپ نے پہلے بھی سنا ہے ورتمان سمے آپ بچوں کی وشو کو یہ سیوا کی آوشکتا ہے, ان سے سیوا کی جو چہرے سے نینوں سے اور دو شبدوں سے, زیادہ لمبا چوڑا بھاشن نہیں, کیا چہرے سے نینوں سے دو شبدوں سے ہر آتما کے دکھ کو دور کر کے خوشی دے دو. آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے, اس لیے خوشنما چہرے یا خوشنما مہورت سدا بنی رہے, کیونکہ من کی خوشی صورت سے اسپشٹ دکھائی دیتی. اتنا بھی کوئی بچت ہوا پریشان دکھ کی لہر میں آئے خوشی میں رہنا اسمبھو سمجھتا ہو, لیکن آپ کے سامنے آ کے ہی آپ کی مورت آپ کی ورتی بنا وائبریشن ہر آتما کے چاروں طرف اپنا اپنا وایو منڈل ہوتا ہے وائبریشن کا, تو آپ کی ورتی آپ کی درشٹی ان کی آتما کو پریورتن کر لے. مانے دکھ کی لہر سے خوشی کی لہر میں لے آئے. آج من کی خوشی کے لیے کتنا خرچہ کرتے, کتنے منورنجن کے نئے نئے سادھن بناتے ہیں, لیکن وہ سادھن اور یہ جو ابھی سادھن بتایا اس میں فرق کیا ہے, وہ ہے الپکال کے سادھن اور آپ کی ہے سدا کال کی سچی سادھنا. تو سادھنا ان آتماؤں کو پریورتن کر لے, اتنے سادھنوں کے پیچھے پڑتے ہیں, اتنا خرچہ کرتے ہیں پھر بھی خوشی میں پریورتن نہیں آتا, تو آپ کی سادھنا ان آتماؤں کو پریورتن کرے. ہائے ہائے لے کر کے آویں اور واہ واہ لے کر کے جائیں, واہ کمال ہے, इन परम आत्मा आत्माओं की। कैसी आत्माओं की? परम आत्माओं की। ये सेवा समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से भी परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों का सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही खुश नसीब। खुश नसीब है या नहीं है? क्यों? किस आधार पर? क्योंकि कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई हम हैं। अधूरे तो नहीं है? ऐसे खुश नसीब आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा नहीं है। कोई और है क्या? इतना नशा चेहरे और चलन से उनको अनुभव कराओ। जरूरी नहीं ज्ञान ही सुना करके परिवर्तन हो जाएंगे। ज्ञान तो सुनते भी है, नहीं भी सुनते है, दरवाजा बंद कर लेते हैं। क्या तरीका बताया? इतना नशा उनके चेहरे से और चलन से उनको अनुभव कराओ। तो करा सकते हो या करते भी हो? ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर के क्या किया? ब्राह्मणों का सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? खुशी। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं वो थोड़ा सा डर डर डर। क्या होता है? अच्छी तरह से जानते हैं तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता है और थोड़ा सा सोचते हैं मेरे बच्चे और उदास इसके बच्चे हैं जो सदा इस अवस्था में रहने वाला है, सदा आनंद का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। तू मेरे बच्चे उदास हो सकता है क्या? मतलब मैं राजाओं का राजा बनाने वाला आया हुआ हूँ, राजा दादी बनाने के लिए आया हूँ का? पाप आकर के क्या बनाते? राजयोग सिखा करके राजा बनाने के लिए आते और राजे बच्चे उदास दिखाई दे कितने साल के बाद, कितने साल की पढ़ाई के बाद, कितने साल हो गए पढ़ाई पढ़ते पढ़ते? 60 साल की पढ़ाई। और लौकिक दुनिया में कितनी लंबी पढ़ाई चलती ही नहीं। तो मेरे बच्चे और उदास ये हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के धातु हुए मन इसके अधीन हो गए, माया के आसीन हो गए। बाप स्वाधीन बनाने आया, राजा किसी के अधीन होता है क्या? राजा तो किसी के अधीन नहीं होता। तो बाप समझ जाते हैं ये किसके बच्चे बन गए? माया के बच्चे बन गए। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो, कौन हो? माया के दास, माया को अधीन करने वाले हो, ये अधीन होने वाले हो आप तो मास्टर मायापति, मायापति क्यों नहीं कहा? कहते आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, शिव बाबा है सर्वशक्तिमान और आप हो मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर मान बाप को तो दुनिया नहीं पहचान पाएगी क्योंकि बाप गुप्त है, और बच्चों को प्रत्यक्ष होना है, ठीक है। फादर सोच संत और संत सोच फादर, तो पहले अपना काम पूरा कौन करेगा? बच्चे करेंगे है? बच्चों को बाप पहले प्रत्यक्ष कर लेगा या बच्चे बाप को पहले संसार के सामने प्रत्यक्ष कर लेंगे? बाप बच्चों को संसार के सामने पहले प्रत्यक्ष कर लेते हैं। आप हो मास्टर मायापति, बाप के लिए तो सिर्फ गायन है, लक्ष्मीपति, सीतापति और मायापति, मास्टर मायापति नहीं। क्यों? क्योंकि मास्टर मायापति बनकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, दुनिया नहीं जान सकती। तो माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। क्यों? किंतु बच्चे तो है महारथी, महारथी मन हाथी सवार, और हाथी सवार जिसने हाथी को अपना आसन बना दिया वो चीटी से डरे, हाथी के ऊपर आसन करने वाला, सवारी करने वाला, जिसका संग रंग लग गया, सवारी करने वाले को किसका संग रंग लग गया? नहीं, जिसकी सवारी की उसी का संग लग गया। हाथी किससे घबराया जाता है? चीटी से घबराता है, फूं फूं के फुसफुसा करता रहेगा किसी कहीं जाग को घुस जाए। तो माया है मरी हुई चीटी, दूर से लगता है जिंदा है लेकिन होती मरी हुई है। तो दूर से परखने की शक्ति चाहिए, जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो, वो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको माँ बाप निर्भय बनने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझ करके डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुत रूप धारण करती है। जब बहुत रूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना तो क्या खेल सकते हैं? जब माया को परख नहीं सकते हैं तो क्या खेल सकते हैं? युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और बोलते क्या है, हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि और मन दोनों सच जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तीखी है और है कुछ भी नहीं। माया क्या चीज है, 63 जन्मों में जो स्वयं ही कर्म किए हैं और उन नीच कर्मों से जो कमजोरी आई है वो तो माया बनकर के सामने आती है। माना माया माना अपनी ही कमजोरी, तो आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। उसको बनाया भी किसने, माया को रचा किसने, हमारी जो रचना है, और रचयिता अपनी रचना से डर जाए तो क्या कहेंगे। तो बाप दादा सदा हरेक बच्चे को कुछ नसीब के नसीब में खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से संतुष्ट और सदा ही खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या है? आराम से जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए कहते हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। तो हेल्थ और हैप्पीनेस इन दोनों का आधार क्या है, प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल जीवन में आज दुनिया वालों के लिए भी और ब्राह्मणों के लिए भी, हद में भी और बेहद में भी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों का आधार क्या है, वेल्थ। ब्राह्मणों की बेहद की वेल्थ और दुनिया वालों के लिए हद की वेल्थ। और वेल्थ से ही अच्छी से अच्छी खुराक खा के हेल्दी बन सकते हैं। तो जीवन में क्या चाहिए, खुराक और खजाना। ब्राह्मणों की बेहद की खुराक कौन सी है, ज्ञान तो जल है, ज्ञान जल से ताकत नहीं आती है। कैसे ताकत आती है, याद से ताकत आती है। जो सच्चा स्नेह होता है उससे ताकत आती है, आप भी विचारी इसमें उससे खुशी बढ़ती है, वही हमारी आत्मा की खुराक है। तो आत्मा की खुराक है याद कहो, स्नेह कहो और दूसरी चीज खजाना। याद में खजाना कौन सा, ज्ञान रत्नों का खजाना जो बाप ने दिया है, पुनरत्नों का खजाना, शक्तियों का भंडार। तो जीवन में चाहिए खुराक और खजाना, और क्या चाहिए। तो आपके पास खुशी को खुराक है तो तभी खत्म हो जाती है, डाक खत्म हो जाता है क्या, खुशी का खजाना अकूट है, अकूट है ना। और जितना खर्च हो उतना बढ़ेगा, अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति के द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे वायुमंडल के द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी, तो सहज पुरुषार्थ हुआ ना, या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? दृढ़ संकल्प रखो, इस बात का, और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रख दो कि खुश रहना है, तो और सब बातें क्या लगेंगी? खेल लगे, और अपना खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित हो जाओ। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की काम से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे मत आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द याद रखो, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कब? साक्षीपन की सीट सदा कब मजबूत रहेगी? जब बाप दादा साथ है। बाप दादा ये क्या है? बाप दादा क्या है? मुरली के अंत में आता है ना, क्या आता है? मात पिता, बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते रूहानी बच्चे। तो बाप दादा और मात पिता अलग अलग करके क्यों बोलते हैं? कोई अंतर है क्या? अंतर है, है? कि नहीं है? है? अंतर है, क्या अंतर है? अच्छा, बाप दादा निराकार में होते हैं, बाप दादा साकार में नहीं है? बाप दादा साकार में नहीं है? अंतर ये है कि माता पिता अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल, और बाप दादा एक ही शरीर में, दोनों कंबाइंड है, बाप भी है और दादा भी है। बाप कौन है और दादा कौन है? बाप शिव बाबा माने एक बिंदु, और दादा, दादा ब्रह्मा बाबा। वो क्या है? बिंदु है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये साकार है, साकार में ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को तो वाणी में बताया कि वो साकार शरीर अभी नहीं धारण करेंगे जब तक उसके बच्चे के रूप में उनका जन्म न हो जाए। तो बच्चे के रूप में जब जन्म होगा सतयुग में, तब साकार बने।
तो बाप किसे कहे और दादा किसे कहे? बाप और दादा, माना ब्रह्मा जी को साकार में नहीं लगे? अच्छा, फिर साकार में है, शिव साकार में है और ब्रह्मा साकार में नहीं है।
बाप के जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों में जो बड़ा बच्चा है, पहला बच्चा कौन? पहला पत्ता, तो पहला पत्ता हुआ तो 500 करोड़ पत्तों में वो सबसे बड़ा पत्ता हुआ ना, बड़ा भाई हुआ ना, तो बाप और दादा ये दोनों एक ही शरीर में कंबाइन है, इनको कोई अलग अलग नहीं कर सकता, बाप दादा कंबाइन, माता पिता कंबाइन नहीं था, बाप दादा माता पिता को अगर कंबाइन कहते तो माता पिता तो मनुष्य शक्ति के बीच ही है, इस सारी शक्ति में जो कुछ भी होता है अच्छा या बुरा उसका अगर बीज रूप में कोई स्वरूप है तो कौन है, माता पिता, माता पिता में अच्छी से अच्छा पार्ट भी है और बुरे से बुरा भयंकर से भयंकर पार्ट भी, ये सारी मनुष्य शक्ति के माता पिता है, तो माता पिता अलग बात और बाप दादा अलग बात, यदि के आज में पहुंच जाइए ब्रह्मा को कितने मोहरे दिखाते, चार या पांच, पांच जो दिखाते हैं वो सब सिर्फ गायन है, दूसरों में नहीं दिखाते, पांचों से काट दिया गया तो चार से स्पष्ट हो गए, नहीं स्पष्ट हुए, दो यदि के आज में और दो गोली दो फिर अंत में प्रत्यक्ष होते और बीच में एक गोली किसने चलाई, किसके द्वारा चलाई, माउंट आबू में जो मुरली चलाई गई वो किसके द्वारा चलाई, टाइटल डाली ब्रह्मा के द्वारा चलाई गई है, तो पांच मामू को ये हो गया प्रैक्टिकल में, दो आदि के एक बीच में और दो वो अंत में, क्योंकि अंत के जो दो है वो भी रुद्रमाला के पहले दो मंत्र है कि नहीं, पहले दो मणके हैं तीन रूप मणके है आपस में भाई भाई, पहले क्या है भाई भाई और बाद में क्या है, है? भाई भाई, तो ये पांच रूप जो ब्रह्मा के हैं प्रैक्टिकल में अंत में सिर्फ चार का चित्र बनता है, चित्र संपूर्ण का बनता है या अधूरे का बनता है, चित्र बनता है संपूर्ण रूप का, माने जब संपन्न स्टेज हो जाए फाइनल तो चार ही रहेंगे ब्रह्मा के चार मुख, उनमें जो सबसे आदि वाला मुख है कौन सा है, सबसे आदि का मुख कौन सा मुख है, ऐसे तो माता पिता दोनों आदि ही होते हैं साथ ही साथ, क्योंकि बच्चे को जन्म दिया जाता है तो दोनों होते हैं एक होता है, दोनों होते हैं, लेकिन लौकिक परंपरा को देखते हुए बीज किसको माना जाता है, बाप को बीज माना जाता है, तो आदि जो ब्रह्मा हुआ जिसमें परमात्मा शिव ने समझने और समझाने के लिए माना, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, सुनना सुनाना या समझना समझना, समझना और समझाना, उसके लिए जिसने प्रवेश किया पहले पहले वो रूप भी ब्रह्मा का है या नहीं, उसे भी पिता का है, जो रूप ब्रह्मा का है या नहीं, वो रूप भी ब्रह्मा का था आज ब्रह्मा, इसलिए कहते हैं तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण, तो आदिदेव
गुरु ने तो ब्रह्मा को भी बोला, माना हम समझे कि दादा लेखराज को भी बोला, लेकिन वास्तव में आगे बोल शास्त्र में किसको कहा गया है? संतों को कहा गया। तो ये राज है कि शंकर को शास्त्रों में आदिदेव क्यों कहा गया है, जिसका कोई जन्म देने वाला नहीं, जिसका कोई बाप नहीं, जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं, माने उसको कोई नहीं समझा सकता, उसकी सदगति कोई नहीं कर सकता, वो सबका सदगुरु है लेकिन उसका गुरु कोई नहीं। तो वो जो आदि पिता है उसमें शिव प्रवेश करता है आत्माओं का बाप, तो वो हुआ बाप। और साथ ही साथ में जितने प्यार का वर्ष पूरा किया माता के लिए, दादा लेखराज ब्रह्मा कोई कहेगा कि उन्होंने नहीं किया? कोई ब्राह्मण माई का नाली ऐसा है जो हिम्मत करे कि बाबा ने इतना प्यार नहीं दिया, कोई और भी शक्त है दुनिया में जो इतना प्यार दे सकता है, कहेगा? नहीं कहेगा। तो माँ का जो पहला पालना का रूप है वो पालना के रूप की पूर्ति ब्रह्मा के द्वारा हुई, तो वो बड़े बच्चे के रूप में जो आत्मा है बड़े भाई के रूप में उनको अपना शरीर छोड़ने के बाद जिस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है पहली पहली बार चंद्रमा के रूप में या भूल चंद्रमा के रूप में दिखाया जाता है वो दादर माना अर्ध नारी का जो रूप है आदांग पुरुष का और आदांग स्त्री का एक ही शरीर में दो है या दोनों शरीर अलग अलग है? एक ही शरीर में दोनों है, इसका मतलब बाप और दादा, तो जो बाप और दादा का रूप है उसके लिए यहाँ बोला बाप दादा ने पहले भी कहा है वो शब्द साक्षी और साथी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की चीज सदा मजबूत रहती है, कैसे भी वो बाप दादा साथ है। क्या कहते हो बाप दादा साथ है तो कुछ कहने कहने के लिए कह देते हो या साथ में है जी है? राम वाली सोन के लिए तो ठीक है जो उसमें तो प्रवेश ही नहीं है तो बाप दादा साथ है और बच्चों के लिए बात कैसे लगू? बच्चे सदैव तो साथ नहीं होते प्रैक्टिकल में ना। तो बोला कि जब बाप दादा साथ है माने जब है तब तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। सदा का रहस्य क्या बताया? अगर बाप दादा कंबाइंड नहीं तो सदा दुखी में साथ है तो ये हो नहीं सकता कि साक्षीपन की सीट मजबूत न हो। कैसे भी सभी हो बाप दादा साथ में है मैंने कहते हो लेकिन है? लेकिन कर नहीं पाते हो, कैसे हो सिर्फ बाप दादा साथ में है लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है और प्रभाव भी पड़ता रहता है। साथ है लेकिन सास को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, ऐसे समय पर जब माया का वार होता है एक किनारे उठा के रख देते इसको बाप दादा कंबाइंड रूप से, जैसे कोई सास में होता है ना कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है कोई ऐसी बात होती है तो सास कभी नहीं होता है, मैं बातों में पड़ जाता हूँ।
ऐसे साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो, कोई है ऐसा कोई है जो कहेगा कि साथ नहीं है? ब्राह्मण कोई ऐसा है कि बाप दादा हमारे साथ नहीं है? जब कहेगा तभी याद आ जाएगा, कोई नहीं कहेगा। सब कहते हैं मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है मेरे साथ नहीं। क्या तेरे साथ है मेरे साथ नहीं, ये नहीं कहते। अरे कहता है मेरे साथ है, मेरा साथ ही है ना। तुमको मन से कहते हो या मुख से कहते हो? हमेशा की स्थिति में देखो, हर समय की ये तो अंदर की बैठने की मजने की चीज है ना, अनुभव करने की चीज है। तो हमेशा कहते हो, मन से कहते हो या उस समय से तो मुख से कहते हो? क्या है मन से कहते हो? हाथ पिलाते हैं मन हाजी, बाप दादा तो खेल देखते रहते, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतने मस्त हो जाते हैं जो देखते भी नहीं कि साथ में कौन बैठा हुआ। तो बाप जी क्या करते, बाप भी साथी से साक्षी बनकर के खेल देखने लग पड़ते, सहयोग नहीं देंगे क्या करेंगे? उस समय बाप भी साक्षी हो जाते हैं और उनके माया का युद्ध देखते। तो ऐसे तो नहीं करो ना, कैसे कि बाप दादा साथ में बैठा रहे और हम माया से युद्ध करते हैं। माया को भगाना आपका काम है या बाप का काम है? आप भगाए सकेंगे? तिरसठ जन्मों की खेल संगनी है तो उसको भगाने की आप में ताकत है? अगर ताकत ही होती तो बाप को क्यों बुलाते? नहीं ताकत है ना, तो साथ में बाप बैठा हुआ उसको याद करो, माया अपने आप भाग जाएगी। लेकिन उस समय बाप एक किनारे याद नहीं आता, माने ऐसा क्यों होता है? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है आत्म की स्थिति में नहीं है, देहभान देह अहंकार आ जाता है। तो बाप भी क्या करते हैं, बाप भी साक्षी से साक्षी बनकर के खेल देखते हैं। जब साक्षी कहते हो तो साक्षी को निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को ये अच्छा नहीं लगता है क्या? क्या अच्छा नहीं लगता है? कहते हैं सिर्फ कि साक्षी है, मैंने दुनिया को दिखाने के लिए कहते कि हमारा साक्षी है, लेकिन वास्तव में वास्तव में भूल जाते हैं। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी से जिसके अधिकारी है। मूल कारण क्या बताया है? इस अप एंड डाउन का मूल कारण क्या बताया? क्या स्थिति में स्थिति नहीं रह पाते, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते। और बात कहते हैं मेरा हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी से जिसके अधिकारी। आप लोग भजन है क्या कि विश्व अधिकारी है? क्या है विश्व अधिकारी है? प्रजा को नहीं बनना है ना, प्रजा बनना है। एक होती है प्रजा और एक होते हैं दास दासी, एक होते हैं राज्य का राजा
और एक होते हैं राज्य अधिकारी। तो विश्व के राज्य का अधिकारी विश्व पिता और विश्व पिता के सहयोगी बच्चे उसमें बुझाई गई जाती है हजार हो गए। ब्रह्मा बाप को कितनी बुझाई दिखाई जाती है कितने टाइम भी है हजार बुझाई तो प्रैक्टिकल में कभी हुई होगी ना नहीं हुई होगी हजार बुझाएं कोई हुई होगी ना 16,000 में तो 10 लाख भी आ जाते हैं लेकिन उनमें शेष कितनी हुई 1,000 और उनसे भी शेष जो ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बनते हैं कितने 108 तो प्रजा तो नहीं बनने हैं राजे होना महाराजे विश्व के राजे प्रजा बनाने वाले हो प्रजा बनने वाले नहीं हो प्रजा बने प्रभावित जो बाप के अलावा किसी और से प्रभावित हो जाए तो उसको क्या कहेंगे प्रजा और जब प्रजा बन जाती है तो बाप को प्रजा योग दिखाने नहीं आया हुआ है बाप क्या सिखाने आया है राजयोग सिखाने आया है राजा बनाने के लिए आया हुआ है तो प्रजा बनने वाले नहीं हो बनने वाले हो राजा राजा बनने वाले प्रजा बनाने वाले नहीं तो राजा फिर कहां बैठते हैं राजा कहां बैठता है तख्त पर बैठता है हमारा तख्त कौन सा है हमारे तख्त कितने हमारे तख्त कितने हैं तीन तख्त हैं कौन कौन से सबसे बड़े से बड़ा तख्त है बाप का तीन तख्त अपने अंदर तुम्हें देखना है बात ना करके कि हम बाप के दिल पर चले हुए हैं क्या एक तो हम अपने अंदर देखे कुछ राज्य जो होते मूवी या मिट्टी बन जाते हैं हाँ हम तो चले हुए दूसरा कोई पूछे ना तो भी कहें हाँ चले हुए लेकिन इसकी तरफ क्या है पहचान क्या है इसकी तरफ क्या है पहचान क्या होगी एक तो खुशी दिखाई देगी और दूसरा है दूर से बोलो यहाँ तक आवाज आ जाए तो दूर दूर चीजों से चलने वाले कौन है कौन नहीं है ये तो पता ही नहीं चलता जैसे संतेबल बच्चों के लिए बोला कि बाप संतेबल बच्चों को याद करती है क्या तो ऐसे ही जो राजा बनने वाले बच्चे होंगे बाप के दिल तक पर चढ़ेंगे होंगे उनको बाप की दृष्टि भी देखने में कैसी लगेगी ये अपना अपना अनुभव अलग अलग हो जाता है बाप तो सबको एक जैसा ही देता है लेकिन लेने वाले लेने में अलग अलग प्रकार का लेते हैं तो बाप की दृष्टि भी इसलिए उसे कड़ी पूरी दिखाई देगी तो इससे साबित होता है कि बच्चा दिल तक पर चढ़ा हुआ है वो दृष्टि का वाइब्रेशन मिलने मात्र के लिए जैसे लौकिक में कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है बाप के दिल पर चढ़ा हुआ होता है तो बाप उसको देख करके ही अंदर 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 ही अंदर खुश होता है सिहाता है तो ऐसे ही यहां भी जो दिल तक पर चढ़े हुए बच्चे होंगे वो व्यक्ति से वाइब्रेशन से बाप की वाचा से भी हर प्रकार से इस प्रकार का अनुभव करेंगे तो राजा बनने वाले और प्रजा बनने वाली तो राजा कहां बैठता है तख्त पर बैठता है पहला तख्त है दिल तख्त पाप तख्त और दूसरा
आकाश आत्मा का सत्य है प्रकृति वो हुआ आकाश और ठीक है। अरे तीन तो बता दिए इसको बताऊंगी तो राजी का तो राजा कहाँ बैठता है सत्य पर बैठता है ना। जब राजा की नशे में होता है प्रैक्टिकल में तो सत्य भी बैठता है ना। तो वो तो जब राजा बन जाएंगे कि अभी राजा बन गए संगम में तो राजा नहीं बन गए बनेंगे कब भविष्य सतयुग में बनेंगे या अभी बन गए वो इच्छुक राजा अभी नहीं बन गए। अभी विश्व की वार्ता ही प्रैक्टिकल में बाबा ने किसी को ये नहीं की माना अभी माला डिक्लेयर नहीं हो गई नंबर वन राजी अभी ये अंदर से समझने की बात है। तो अभी यहाँ है बाप का दिल तक और अकाल तक वो तक की भूल में तो होगा भविष्य में लेकिन अभी कौन कौन से तक है अकाल तक और दिल तक। तो जब राजा की नशे में होता है तो प्रैक्टिकल में होता है ना तो तट पर बैठता है तो साक्षीपन का तट तो छोड़ो नहीं जो अलग अलग पोशाक करते हो ना उसमें थक जाते हैं। आज ममता का पोशाक किया कल वाचा का पोशाक किया संबंध और संपर्क का पोशाक किया थक जाते हैं। तो एक ही पोशाक करो कि साक्षी का तट नहीं छोड़ो और कुटुनमा तक मशीन बन के रहना कोई राजा है कि सीरियस होकर के तट पर बैठते हैं बैठा तट पर है लेकिन बहुत क्रोधी है आफिशियल हो जाता है तो राजा अच्छा लगेगा प्रजा को प्रजा राजा से क्या आशा करती है प्रजा मतलब ही क्या है ब्राह्मणा प्रकट और ज्ञा माना जायते जन्म लेने वाली तो प्रजा ने प्रजा के रूप में जन्म कब लिया जो प्रजा बनी है? अरे कभी तो उस राजा ने संगत उन्हें उस आत्मा उन आत्माओं को जन्म दिया होगा ना ज्ञान में तो प्रजा माना बच्ची तो प्रजा ये चाहती है कि राजा हमको इस नजर से देखे समान दृष्टि से कि जैसे सारी सल्तनत राजा का क्या है कुटुंब रचना तो कोई कोई राजा आशीषे लेकर के बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता घर परिवार का मुखिया की दृष्टि से देखना और एक आशीषियल रूप में देखना ज्ञान तो पड़ जाता है मौसम से पक्ष कहेंगे ये राजा नहीं है तो आप सदा सक्षम सिंह है ना कभी तट पर बैठते हैं और कभी नहीं आपका साक्षी पीता तक ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तत्व नशीन वो करना नहीं पड़ता है सोते भी तत्व नशीन हो उठते भी चलते भी नहाते भी संबंध और संपर्क में आते भी तत्व नशीन तो तत्व पर बैठना आता है कि बैठना ही नहीं आता है तत्व से खिसक जाते साक्षीपन के तत्व नशीन आत्मा कभी भी कोई भी समस्या में परेशान नहीं हो सकती समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप तख्त नशीन ऊपर हो जाएगी समस्या आपके लिए सिर नहीं खा सकेगी नीचे दबी रहेगी कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी परेशान भी कब होते बाबा तो राखी मिलाए देते तो सांड मिलाए देते परेशान कब होते जब सांड में
स्वयं किसी की शान में नहीं रहती, माना आकार तत्व से नीचे उतर जाते। तो माया आपको परेशान नहीं करेगी और कोई को भी दबा दो तो खत्म हो जाएगा ना अंदर ही अंदर। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है, आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन हो अब से ही ये संस्कार डालेंगे, तख्त नशीन के तब, जब आप तकनीशन के संस्कार डालेंगे तब विश्व के तख्त पर भी देखेंगे। और यहाँ जितने लंबे समय तक ये संस्कार डालेंगे, उतने लंबे समय तक 84 जन्मों में तख्त पर भी देखेंगे। यहाँ सदा काल तक तो नशीन नहीं होंगे, तो वहां भी सदा अर्थात जितना समय पूर्ण होना चाहिए उतना नहीं होगा। संस्कार सब प्रकार से आत्मा में आदि भरने, सचुर में संस्कार जो भरे हुए होंगे वो कार्य करेंगे। कहां भी संस्कार कार्य करेंगे, अभी संगम युग में भरे हुए संस्कार, साक्षीपन के संस्कार वहां व्यक्तिगत में कार्य करेंगे। व्यक्ति के संस्कार अभी से भरने हैं, ऐसे नहीं सोचना कि अभी तो कुछ समय पड़ा हुआ है इतने में बिना तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक क्या, चाहे हर व्यक्ति 500 करोड़ की दुनिया में विनाश होगा तो भी अचानक होगा, और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी ये विनाश होता है तो अचानक। पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब कुछ अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने, अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध में आए, संपर्क में आए और बदल गए। सोचा था ये सारी को ब्राह्मण बनेंगे, ये सोचा था, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी, क्या क्या बोला है विनाश के बारे में, जब सब विनाश के बारे में निश्चिंत हो जाएंगे तब विनाश होगा। तो आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी, सोचेंगे 2000 सोचा था वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर ले, 60-65 साल हो गए, तो 60 करते करते कराते कराते पहली माया अपना जादू फैलाएगी, क्या करेगी अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, वो क्या करेगी अलबेला बनाएगी। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ऐसे ऐसे पहली माया अलबेला बनाने की कोशिश करें, फिर अचानक ही सब विनाश हो जाए। विनाश की देश को निश्चिंत हो जाए, मन सब अनुभव हो जाए, है